मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्रिय नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, दोस्तों, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोनों साथियों के नाम हैं राजेश कुमार, जो हाजीपुर बिहार से हैं, और अक्षय पवार, जो बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। तो राजेश और अक्षय, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और उसकी शुरुआत करते हैं एआईआर न्यूज से। दोस्तों, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जो डिमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण की जो बात है, वो लगातार हमारे देश के बहस के केंद्र में है। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बहसें शुरू हो गई हैं, और यहां तक बहस शुरू हो गई है कि अब मोदी जी को चाहिए कि वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार पर इसी तरह से कोई सर्जिकल स्ट्राइक करें, क्योंकि अब लोग ये भी मानने लगे हैं, अब धीरे धीरे देखिए कि स्थिति शांत होती जा रही है। यहां तक आप महसूस करेंगे कि जो विमुद्रीकरण को लेकर के जो बहुत तीखी और विरोध भरी आवाजें थी, वो भी अब थोड़ी सी कम हुई है। उसका कारण यह था, दोस्तों, नई नई स्थिति थी, संकट भी नए नए थे, संकट नए नए ही नहीं थे बल्कि ज्यादा भी थे। धीरे धीरे स्थितियां ठीक होती जा रही हैं, तो आक्रोश भी कम होता जा रहा है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि नहीं, नीति तो ठीक थी लेकिन इसका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ। मतलब अब बात प्रशासनिक स्तर पर जा रही है। मैंने इससे पहले भी सतर्क आप लोगों को किया था कि खासकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से इसको लागू किया गया और इसमें कौन सी जो प्रशासनिक जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, वह दिखाई दे रही हैं। मित्रों, इसके साथ ही आप देखिए कि अब जो जोर हो रहा है वो चौतरफा वो कैशलेस सोसाइटी की तरफ हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हो रहा है। कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे जो मन की बात के अंतर्गत कहा है, उसमें सभी युवाओं से, आप सबसे यही आह्वान उन्होंने किया है कि प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को आप इसके बारे में जानकारी दें। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए मैं इस अपनी ओर से उसमें जोड़कर आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उनके इस अनुरोध को कार्यान्वित करें। कोशिश कीजिए कि आप 10 लोगों को नहीं, जितने लोगों को भी कर सकते हैं उतने लोगों को कैशलेस सिस्टम के बारे में बताइए। मुझे मालूम है कि जो यंग जनरेशन के आप सब हैं वो कैशलेस सिस्टम में ही चल रहे हैं, और ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि आप सब जब एकेडमी की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो कैशलेस ही सिस्टम होता है। आप बैंक में से सीधे मोबाइल वोबाइल से करके आप उसे कर देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उनका आह्वान है। तो दोस्तों, जो कैशलेस इकोनॉमी, मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है और ये होना ही था। आपको ध्यान होगा कि इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो दैनिक जागरण में प्रकाशित भी हुआ है और उस वो आर्टिकल फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी किया गया है। वो एक स्टेज तक की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद तेजी से कैशलेस व्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस आर्टिकल को आप अपने आप में कंप्लीट आर्टिकल न माने, वह उस समय तक की ही कंप्लीटनेस को शो कर रहा है। उसके बाद अब जो कदम नए नए उठाए जा रहे हैं, पीओपी पीओएस क्या इस तरह की जो मशीनें आ रही हैं और दूसरी जो चीजें हो रही हैं, प्लीज उसके साथ ऐड करते जाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टॉपिक जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये पहली खबर थी। और दूसरी खबर के अंतर्गत वो जो नाभा जेल की जो घटना हुई है वो आप लोगों ने आज अखबारों में डिटेल में पढ़ी होगी, न्यूज में आपने सुनी ही है। मित्रों, उसको लेकर के आपने देखा कि कुछ समय पहले भोपाल जेल से भी कैदी भागे थे, जो एक तरह से आतंकवादी खूंखार कैदी थे, और ये दूसरी घटना हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा जो जेल प्रशासन है, जो उनकी सुस्ती है, उनके जो कमियां हैं, या कह लीजिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था में जो खामियां हो सकती हैं उनकी ओर तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं तो इंगित करता ही है। अदरवाइज ये इतनी आसान चीज तो नहीं है कि कोई इस तरह से निकलकर भागे। अब इनकी जब जांच रिपोर्ट आएगी तब हम लोगों को कुछ तथ्य मिल सकेंगे, एक ठोस तथ्य मिल सकेंगे। अभी तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं और सिविल सर्विस में आपको ठोस तथ्यों की जरूरत होती है। तो इन रिपोर्ट्स पर आप निगाह रखेंगे और जब भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब रिपोर्ट्स आ जाती है तो उसके आप फिर उसे आप नोट कर लेंगे। दोस्तों यहां मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है। आपके लिए खालिस्तान नया शब्द होगा, हम लोगों के लिए नया शब्द नहीं है, क्योंकि देश से सच पूछे तो 1980 के आसपास इस एक बहुत ही संकट के दौर से गुजरा है, खासकर खालिस्तान के मामले को लेकर। पहली बात तो ये कि बहुत क्लियर समझ लीजिए कि ये जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है ये आतंकवादी संगठन नहीं है, मूलतः यह एक अलगाववादी संगठन है। यह बात अलग है कि अलगाव के मांग को पूरा करने के लिए वो आतंक का सहारा लेते हैं। देखिए आतंकवादी संगठन तो हम उन्हें कहते हैं कि जो जिनका काम ही आतंक फैलाना है, फैलाओ, बर्बाद करो, ये करो, मारो, फलाना फलाना करो। लेकिन जो अलगाववादी संगठन है वो देश से अलग होने की बात करते हैं। तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट था ये बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट था जो पंजाब को एक भारत से अलग करके एक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा था। आपने भिंडरावाला वाले का आप नाम कभी कभी किताबों में पढ़ेंगे और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जब सिलेबस आप देखेंगे किसी किताब में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मूवमेंट, ये आपको खालिस्तान वाला चैप्टर मिलेगा। इसके बाद आप एक और शब्द सुनेंगे, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार एक शब्द सुनने को मिलेगा 1984 में, जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उठाया था और वो था कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उस स्वर्ण मंदिर में जो लोगों के रुकने की जगह है, जो तहखाने हैं, वहां सेना भेजी गई थी। सेना मित्रों इसलिए भेजी गई थी क्योंकि सरकार के पास ये खुफिया रिपोर्ट आ चुकी थी कि वहां इस तरह के जो अलगाववादी आतंकवादी कह लीजिए बहुत बड़ा समूह छिपा हुआ है, उनके पास बहुत ही हथियार, गोला बारूद है, मतलब वो षड्यंत्र रच रहे हैं पूरी तरह से, एक तरह से वो राष्ट्रद्रोह ही है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर फिर मिसेस गांधी ने वहां सेना भेजी और वो सच में वो सारी चीजें मिली, मतलब वो चीजें मिली भी और उसके परिणाम स्वरूप ही आप कह लीजिए कि उसी की प्रतिक्रिया में फिर एक उनके अपने ही अंगरक्षक ने मिसेस गांधी की हत्या कर दी। ये ब्लू स्टार कहलाता, जो वहां अभियान छेड़ा गया था वो ब्लू अभियान कहा जाता है, ब्लू स्टार अभियान कहा जाता है। तो मित्रों ये दो तीन चीजें हैं खालिस्तान जो पंजाब को देश से अलग करने की मांग को लेकर के था। नाम ही इसको लिखा था खालसा से, खालिस्तान स्थान का नाम है और इसका जो संकेंद्र था वो कह लीजिए विदेश में ज्यादा था। कनाडा में ऐसे ग्रुप मिले थे जो इसको इसके पक्ष में थे, इसको समर्थन देते थे, वहां भी कुछ इस तरह से बातचीत हुई थी। तो मित्रों ये थोड़ा सा आपको इसे जानना होगा। अब इस पर जब एडिटोरियल कमेंट डेफिनेटली आएंगे और एडिटोरियल आर्टिकल भी आएंगे तब आपको उन चीजों को जानने समझने में और आसानी हो जाएगी। दोस्तों न्यूज में ये दो बातें ही थी, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। फ्रेंड्स आज के न्यूज पेपर्स में जो भी दूसरी घटनाएं हैं वो तो मैं आपको पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन इससे एक दिन पहले जो दो दिन पहले जो घटना घटी थी, जो बीच में दो दिन का हमारा गैप हो जाता है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, दुखद घटना थी, वो थी क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के निधन का होना। हालांकि वो 90 वर्ष के थे, काफी लंबी आयु थी, लेकिन फिदेल कास्त्रो पूरी दुनिया में एक ऐसे महान नेता के रूप में जाने जाते हैं कि निश्चित रूप से उनका जो निधन है वो एक तरह से दुनिया की राजनीति में कहीं ना कहीं एक शून्यता पैदा करता है और मन को थोड़ा भावुक भी बनाता है। मैं भावुक बनाता है कि बात इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि जब हम लोग यंग थे और सिविल सर्विस की तैयारी में तो बहुत बाद में आए, 1970 के आसपास जब होश संभल गया चुका था। दोस्तों उस समय कुछ ऐसे लीडर थे इस दुनिया के सच पूछे तो जो हम लोगों के एक आदर्श हुआ करते थे, उसमें फिदेल कास्त्रो भी एक थे। फिदेल कास्त्रो के बारे में पढ़ते समय आपने एक और नाम सुना होगा, चे गुएवारा। चे गुएवारा जो चिली में कम्युनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, चे गुएवारा वो बहुत बड़े इसी तरह से एक लीडर थे। चे गुएवारा और फिदेल कास्त्रो में एक विशेषता ये थी कि ये जो छापामार पद्धति होती है जिसे गुरिल्ला पद्धति कहते हैं, इन दोनों के बहुत बड़े आप कह लीजिए कि समर्थक थे, और गुरिल्ला पद्धति को अपनाकर ही फिडल कास्त्रो ने क्यूबा में जो वहां सत्ता थी पहले उस पर अधिकार किया था। गुरिल्ला पद्धति, हमारे यहां शिवाजी की पद्धति काफी कुछ गुरिल्ला पद्धति से मिलती है। उस समय इस तरह के बहुत से लीडर हुआ करते थे मित्रों, और फिडल कास्त्रो तो उस समय अखबारों में इतने छपते थे, उनकी लंबी सी दाढ़ी होती थी, अच्छी हाइट थी उनकी, और कोट जैकेट पहने रहते थे, बिल्कुल सेना सैनिक की तरह दिखते थे और बड़े आकर्षण के केंद्र थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस यंग एज में उन्होंने वो कम्युनिस्ट मूवमेंट क्यूबा में करके दिखा दिया था, उस क्यूबा में जो अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश की नाक पर बसा हुआ है। आप मैप उठा करके देखिए कि क्यूबा कहां है, हार्डली 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है वो अमेरिका से, और इतने नजदीक रहते हुए उसने कम्युनिस्ट आंदोलन करके वहां सत्ता पर अधिकार किया, और सत्ता पर अधिकार ही नहीं किया बल्कि अमेरिका के नाक में दम करके रखा। अमेरिका बहुत कोशिश करता रहा, कहा जाता है कि फिडल कास्त्रो की हत्या कराने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो सका। ये उनकी फिडल कास्त्रो की अपने आप में बहुत ही जबरदस्त ताकत थी, बहुत ही साहसिक नेता। मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी की किताब में विश्व समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब को देखें, जो क्लास 12th के लिए है, विश्व समकालीन राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, तो उसका जो पहला ही लेसन है अध्याय, वो शीत युद्ध का दौर है। और शीत युद्ध के दौर में जैसे ही आप एक पेज पलटेंगे, आपको एक सब पॉइंट मिलेगा, क्यूबा का मिसाइल संकट। ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट है उसमें आपको फिडल कास्त्रो का नाम मिलेगा। ये 1961 की घटना, चूंकि आपके एनसीईआरटी में ये है, इसीलिए मैं आपसे इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि फिडल कास्त्रो को आप सामान्य रूप में पढ़कर इग्नोर मत कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही अमेरिका और रशिया के बीच में एक शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था, कोल्ड वार, जिसमें लड़ाई तो नहीं हो रही है जमीन पर लेकिन युद्ध जारी है, राइट। तो वो 1962 में हुआ कि रशिया ने यह फैसला किया कि क्यूबा में मिसाइल्स स्थापित कर दी जाए, क्यूबा में मिसाइल्स स्थापित कर दी जाए। और क्यूबा में उसने इसलिए सोचा क्योंकि क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री था, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री था, और क्यूबा ने इसके लिए सहमति दे दी कि हाँ, आप हमारे यहां आइए और अपना मिसाइल स्थापित कर दीजिए। और अगर क्यूबा में मिसाइल स्थापित हो जाती है तो अभी मैंने कहा कि हार्डली 200 किलोमीटर की दूरी अमेरिका से, यानी कि अगर वहां मिसाइल स्थापित हो जाती है तो रशिया को यह सुविधा हो जाएगी कि वो अमेरिका के किसी भी ठिकाने पर मिसाइल्स अटैक कर सकता है। तो आप सोच करके देखिए कि यह अमेरिका के लिए कितने ज्यादा भय की बात हो गई, आशंका की बात हो गई, डर की बात हो गई। और क्यूबा ने ऐसा किया, फिडल कास्त्रो ने ऐसा किया, और उस समय पूरी दुनिया बड़ी जबरदस्त रूप से चिंतित हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कोल्ड वार है ये हॉट वार में कन्वर्ट हो जाए, कहीं अमेरिका रिट्रीट करे और पता लगा कि युद्ध हो गया और मिसाइल युद्ध हो गया। अगर वो मिसाइल युद्ध होता तो आप जानते हैं कि फिर तो पूरी दुनिया, वो तृतीय विश्व युद्ध तो दुनिया के अंत का ही कारण बन जाता। तो दोस्तों, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये एक तरीके आप कह लीजिए कि जो कोल्ड वार था उसका क्लाइमेक्स था। तो ये एक चैप्टर है मित्रों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग, समय है कि आप उस चैप्टर को पढ़ लें। इसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल कमेंट भी किए हैं, वो एडिटोरियल कमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो कमेंट आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट्स बहुत अच्छा है। उसमें उन्होंने लिखा है फ्रेंड्स कि चूंकि अब क्यूबा तो कम्युनिस्ट कंट्री था तो बट नेचुरल है कि उन पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, और कम्युनिस्ट रिजीम का अपना एक थोड़ा आर्थिक विकास को लेकर के दूसरे तरह का संकट भी पैदा हो जाता है। तो उस तरह से तो ये बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं हो पाया, लेकिन क्यूबा के जो दो सेक्टर हैं जो फिडल कास्त्रो के नेतृत्व में जो उन्होंने सफलता पाई है, वो एक तो एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ केयर सिस्टम, क्यूबा का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, उसमें क्यूबा को बहुत जबरदस्त रूप से सफलता मिली। लेकिन फिर एक अच्छी बात है, अगर हम बिल्कुल आज की पोजीशन पर आ जाएं, और आपको लेटेस्ट जानना भी चाहिए कि आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब बराक ओबामा पिछले साल की ही बात है या इस साल की शुरुआत की बात है, मतलब हाल की ही घटना है कि जब बराक ओबामा क्यूबा गए, पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति क्यूबा गया, वो गए और दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत हुई, तो ये कह लीजिए कि जो तनाव था कम से कम वो खत्म हुआ। तो ये विश्व उदारीकरण का इतना फायदा तो हुआ कि अब ये जो शीत युद्ध है वो तो खैर रशिया के खत्म होने के बिखरने के बाद से ही कम होने लगा था, फिर ढीला पड़ करके खत्म जैसा ही हो गया, लेकिन क्यूबा और अमेरिका में जो एक इस तरह से एक जो मैत्री की भावना आई, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही राहत देने वाली बात थी। ये बात अलग है कि जब वो बराक ओबामा क्यूबा आए थे तो फिदल कास्त्रो ने मिलने से मना कर दिया था। फिदल कास्त्रो बराक ओबामा से नहीं मिले, फिदल कास्त्रो की हेल्थ खराब रहने लगी थी मित्रों, तो काफी पहले 2008-2007-2008 के आसपास फिर उन्होंने जो सत्ता है वो अपने भाई को सौंप दी, जिनका नाम राउल कास्त्रो है। तो फिर उन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, तो क्यूबा पर जो कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे अमेरिका ने वो प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्यूबा भी बहुत जल्दी आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ जाएगा। तो मित्रों, ये फिदल कास्त्रो की पृष्ठभूमि को लेकर के मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आपको जानने चाहिए। हाँ, एक तथ्य आपको मैं और भी बताना चाहूंगा कि भारत के क्यूबा के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आपको मालूम है कि पंडित नेहरू पहले से समाजवादी विचारधारा के थे, बहुत लंबे समय तक रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, तो स्वाभाविक रूप से रशिया अगर हमारा मित्र है तो रशिया के जितने भी मित्र हैं या उस ग्रुप के जितने भी लोग देश हैं वो हमारे मित्र हैं, तो क्यूबा भी हमारा मित्र था और फिदल कास्त्रो भारत आते भी रहते थे और खासकर मिसेस गांधी के व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे राजनेताओं के संबंध फिदल कास्त्रो से रहे हैं, बहुत ही मानते थे फिदल कास्त्रो मिसेस गांधी को। तो जो इस तरह के व्यक्तिगत संबंध होते हैं नेताओं के, नो डाउट कि वो राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में बहुत जबरदस्त रूप से काम करते हैं, जो अभी आप नरेंद्र मोदी जी की भी जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है उसमें आप उसे उसकी झलक देख सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स से बस इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक मेल मिला है फ्रेंड्स, ये है एक रवि यादव का, जो मुंबई से हैं और हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अपने परिवर्तन के बारे में लिखा है, मैं थोड़ी सी इनकी बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 15 दिन तक आपके साथ रहा, इन 15 दिनों में मेरे अंदर तीव्र परिवर्तन आए, खासकर सोचने के तरीके में, उसमें से कुछ बदलाव हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि 15 दिनों की क्लास के पहले जब मैं विषयों ब्रैकेट में टॉपिक है को पढ़ता था तो न उन्हें एक दूसरे से रिलेट कर पाता था और न ही गहराई में जा पाता था, लेकिन 15 दिनों की क्लासेस के बाद अब मैं आसानी से विषयों को रिलेट कर लेता हूं, बल्कि गहराई तक समझ भी जाता हूं। फिर सेकेंड पॉइंट दिया है कि 15 दिनों की क्लासेस में जो ज्योग्राफी पे लेक्चर हुए थे उसके बाद जब मैं घर पे आके एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी पढ़ा तो समझ में आ गया और पढ़ने में मजा आ रहा था। सर, इन 15 दिन को क्लासेस से आने के बाद चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया, चाहे वो टीवी न्यूज, एआईआर न्यूज या न्यूज़पेपर हो। रवि, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी ये क्षमता लगातार निरंतर बढ़ती जाए। सच पूछे मित्रों, तो मैं इस तरह के मेल बीच बीच में इसलिए पढ़ करके सुना देता हूं ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि जो 15 दिन की क्लासेज है उसका मकसद क्या है। और सच पूछे तो मकसद यही है जो रवि यादव ने लिखा है, और मुझे लगता है कि यही वो शुरुआत है जो सिविल सर्विस की तैयारी को सही तरीके से करने के लिए जरूरी भी है, और यही 15 दिन की क्लासेस में यहां कराया जाता है। तो मित्रों, अन्य ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति भी बहुत आभार और धन्यवाद। उनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं: अभिषेक गुप्ता, तनु कुमारी झारखंड से, विशाल गुप्ता, नितिन भारद्वाज, शिव दयाल कुमार, राधना पांडे, अमित कुमार गिरिडीह झारखंड से, ममता चाचर आगरा से, और शाश्वत अग्रवाल नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।